मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।
बात करना चाहते हैं वो अभी बंद है।
लैली, हेलो।
हेलो, सलाम अलैकुम, मसूद बोल रहा हूँ।
वालेकुम सलाम, माफ करना, लैली का नंबर लिखा हुआ था।
उसका सिम कार्ड अपने फोन में लगा दिया है। अली रजा, तुम नहीं जानते उस दिन लैली कहाँ जा रही थी?
मैं कभी भी लैली के काम में दखल नहीं देता था।
ऐसा काम करने पर मजबूर मत करो जिससे गफूरी खानदान का नाम खराब हो जाए। मेरे सवाल का जवाब दो।
क्या मतलब, धमकी दे रहे हो?
तुम इसे जो समझना चाहते हो समझ सकते हो, मेरे सवाल का जवाब दो।
तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है?
सुनो, जब तेहरान आऊं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी बेहतर होगा।
हाँ, यही बेहतर होगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें लैली से थोड़ी भी मोहब्बत होती तो तुम ऐसी बकवास नहीं करते।
चाय है?
हाँ बैठिए, लाता हूं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
देखा आपने, कल रात एक और कुएं में चला गया।
कितने खूबसूरत हैं, कहाँ से लाई हो?
एक ड्राइवर ने दिया, अगर पसंद है तो ले लीजिए।
एक कितने का है?
पैसे नहीं, जितने भी चाहे ले लीजिए, बेरी के पत्ते खाते हैं।
तुम्हारा शुक्रिया। कहाँ रखूं? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ ले लेता हूँ।
कैसे हो इंजीनियर साहब?
हाँ,
जल्दी लौट आए?
काम जल्दी पूरा हो गया।
सलामत रहो।
तुम्हारा नाम क्या है?
फरिश्ते।
फरिश्ता साहिबा, तुम्हारा शुक्रिया।
शुक्रिया कैसा?
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
ये लीजिए।
इसकी क्या जरूरत है?
अरे नहीं, शुक्रिया। छुट्टे वापस मत देना, कल एक पानी की बोतल ली थी, पैसे देना भूल गया था, माफ करना।
खुदा को नहीं भूलना।
मैं चलता हूँ।
खुदा हाफिज।
मिल गया। मैंने कहा था ना वीजा मिल जाएगा।
बहुत अच्छे।
उन्होंने कहा कि पापा का वीजा भी तैयार है। कोई यकीन नहीं करेगा कि हमें इतनी आसानी से वीजा मिल गया।
कितना अच्छा हुआ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने आराम से सब काम हो गया।
खुदा करे कि तुम्हें रेजिडेंस परमिट भी इतनी ही आसानी से मिल जाए।
पापा ने कनाडा के अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट किए हैं कि एक दो महीने में ही रेसिडेंस परमिट मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों?
कुछ नहीं।
अपने वीजा के लिए परेशान हो? जैसे ही शादी हो जाएगी हम तुम्हारा वीजा भी ले लेंगे।
तुमने मेरे बाबा से क्या कहा मसूद?
मैंने क्या कहा?
तुमने कहा कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा वो समझते हैं। तुम उनके पास क्यों गए थे?
उन्होंने ही कहा था कि मुझसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था।
जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, जब कहा कि हम दोनों में बहुत फर्क है, तो बताओ मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? तुमने उन्हें क्या जवाब दिया?
मैंने सब बता दिया उन्हें। वो सारी बातें जो उन्हें बताने की अब तक जुर्रत नहीं की थी।
सच्ची?
हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं उनकी बेटी नहीं हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे?
अब मैं ऐसा समझती हूँ कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ वक्त उनकी बेटी नहीं रहूंगी। ये वीजा की मिठाई, ये लीजिए।
खुशकिस्मती से उसके होश की सतह गहरी नहीं है।
खुशकिस्मती से?
मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये एक मेडिकल इस्तिलाह है। मामूलन ऐसे मरीज के जिनके होश की सतह गहरी होती है, उनकी हालत स्टेबल होने में कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपके मरीज के केस में 24 घंटों से ज्यादा नहीं लगा।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यानी अब कब पता चलेगा कि कब होश में आएगी?
आप बैठते क्यों नहीं? बदकिस्मती से हम इस हालत में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करमी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब कोई मरीज कोमा में चला जाता है, उसकी हालत ऐसी होती है कि जब तक उसके होश की सतह नॉर्मल तक नहीं पहुंच जाती है, हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए।
अगर मुल्क से बाहर ले जाऊं, वहां उसके लिए कुछ हो सकता है?
आपके मरीज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि वो एक लंबा सफर बर्दाश्त कर सके। अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर दोबारा गुस्सा नहीं हो जाए, तो मैं आपसे कहूंगी उसके लिए दुआ करें। आप दुआ करें, हम हमारा काम अंजाम देंगे। आप बहुत ना उम्मीद ना रहें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में उसके होश की सतह बेहतर हो जाएगी, तब हम किसी तरीके से उसके साथ राबता कायम कर सकेंगे। खुदा पर भरोसा रखें।
मैं उसे देख सकता हूं?
हाँ, क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल सिर्फ आईसीयू के बाहर के शीशे से।
किस दलील की बुनियाद पर इतने सारे पब्लिशर्स के होते हुए तुम इस फारूक
करामती
के साथ काम करना चाहती हो?
मेरी दलील बहुत ही सादा है, क्योंकि वो एक ही ऐसा बंदा है जो मेरी किताब बगैर किसी सेंसर के छाप सके।
उसके बदले में क्या चाहता है?
एक रजिस्टर्ड मौजू पर तहकीक।
मुझे लगता था कि तुम्हारा काम और कलम तुम्हारे लिए बहुत अहम है, कभी किसी कीमत पर नहीं बेचोगी।
अहमियत अभी भी है, लेकिन कभी इंसान को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है ताकि अपने मकसद तक पहुंच सके।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लैली। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर कनाडा के पब्लिशर्स को इस बारे में पता चल गया तो कितना बुरा होगा? वो लोग हमारे बारे में सब जानते हैं।
मैंने इसके बारे में भी सोचा है। मैंने इन फारूक करामती साहब से कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा नाम इस रजिस्टर्ड किताब पर रहे, लेकिन सच पूछो तो जो पैसा मुझे देंगे बहुत ज्यादा है।
देखो, अगर बात पैसे की है तो हमारे पास बहुत पैसे हैं।
बात पैसे की नहीं है, मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मेरी किताब छप जाए।
लेकिन उसने तुमसे ही ये काम करने के लिए क्यों कहा?
क्योंकि उसे मेरे लिखने का अंदाज पसंद है, यानी उन्हें मेरा अंदाज अच्छा लगता है। उसके अलावा ये रजिस्टर्ड किताब किसी ऐसे इंसान के बारे में है जिनके ये बहुत ज्यादा मकरूज हैं।
तुम चाहे कुछ भी कहो, ये आदमी मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है।
अब इतने बदबीन भी मत बनो जनाब।
क्यों बदबीन ना बनूं? यही तो हकीकत है। अगर कल इस आदमी की वजह से तुम्हें वीजा मिलने में मुश्किल पेश आएगी तब भी मुझसे कहोगी कि बदबीन ना बनो?
लेकिन मसूद, मैं एक साल से अपनी किताब छपवाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये फितरी बात है कि मैं अपनी किताब छपवाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश करूँ।
तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ 3 महीने दूर रहने वाले हो, इसमें इतना उदास क्यों हो रहे हो?
आप भी है ना।
हमारी फ्लाइट का ऐलान हो रहा है, हमें जाना चाहिए।
लैली बेटी।
जी माँ।
अपना ख्याल रखना।
जी जी, शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
लैली जान।
हाँ बोलो ना।
अपना काम पूरा करके जल्दी आना।
जरूर,
तुम्हारा इंतजार करेंगे।
ठीक है,
ख्याल रखना अपना।
भी ख्याल रखना।
खुदा हाफिज।
तुम्हारी कमी महसूस होगी।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
तो अब खुदा हाफिज लैली।
खुदा हिफाजत करे, अपना ख्याल रखना।
तुम भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम चलो, मैं आता हूं। मैं नहीं चाहता तुम सोचो मैं तुम्हारी तरक्की में रुकावट बन रहा हूं। लैली, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना।
मुझसे नाराज हो?
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। डॉक्टर से मिले?
कहा उसकी हालत बेहतर है।
कुछ बताया होश में कब आएगी?
उन्हें खुद नहीं पता, हमें सब्र करना होगा। बेहतर है आप घर चली जाएं, यहां बैठने का कोई फायदा नहीं।
नहीं, मुझे उसे देखना है।
तुमसे बात करनी है रजा।
अभी मौका नहीं है, नहीं देखते?
यही मौका मुनासिब है।
रजा बेटा, मैं अपनी दवा लाना भूल गई हूं।
मैं अभी नीचे जाकर ले आता हूं।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं ईरान में नहीं था, लैली के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मुझे खबर नहीं है?
मैं कभी भी लैली के मामले में दखल नहीं देता था। उसने तुम्हारी वजह से हम सबको छोड़ दिया। मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम मेरे माँ बाप से बात करो।
मैंने तुम्हारे साथ बात करना बेहतर समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे हालात में उनके सिर पर और परेशानी डालूं। कल जब लैली का एक्सीडेंट हुआ, वो कहाँ जा रही थी?
देखिए मसूद भाई, दो मरतबा जब लैली ने अपने आर्टिकल्स दूसरों के नाम से छापे, या जब वो बाबा से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई, या जब घर वापस आई, मैंने कभी उसकी बातों को अहमियत नहीं दी। उसका दिमाग आसमान पर था, हम सब नाराज थे।
रजा, तुम्हारे बचकाने झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लैली 3 महीने पहले हमारे पास कनाडा आने वाली थी, लेकिन वो आज तक नहीं आने का कोई ना कोई बहाना बनाती रही। क्यों?
मुझे लगता था लैली इन बातों से ज्यादा अहम है। वो वहां ऊपर आईसीयू में है, और तुम क्या सोच रहे हो?
वो बातें जो उसके बारे में सुनी है, क्या मुझे जानने का हक नहीं कि 6 महीने बाद जब ईरान वापस आया तो मेरी मंगेतर मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आई?
अगर तुम्हारी ये परेशानी है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं।
ये मेरी परेशानियों में से एक है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस मुद्दत में वो एक किताब पर काम कर रही थी, 3-4 शहरों में गई थी, इस्फहान, कज़वीन और देज़फुल, बस इतना ही।
ठीक है, ठीक है। रजा, तुमसे एक सवाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक मर्द की तरह उसका सही सही जवाब दो। किसने लैली को कनाडा नहीं आने का मशवरा दिया? देखा तुमने, तुम भी शक में पड़ गए ना? ये देखो, मैंने जो कुछ भी देखा वो तुम्हें बताता हूं। मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।
भाई साहब संभाल के, अगर तुम सिगरेट पीना ही चाहते हो तो मेहरबानी करके मेरी सिगरेट खराब मत करो। जाओ, जाकर अपने लिए खरीद लाओ।
आरश,
हाँ,
आज रात ही अपने दोस्तों को फोन करके मुझे फारूक का पता निकाल कर दो।
मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में फारूक को ढूंढने से तुम्हें क्या फायदा होगा। अगर मेरी बात मानो तो थोड़ा सब्र करके देखो लैली का क्या होता है, ठीक है?
ये शक तो मुझे दीवाना बना देगा। एक तरफ जब लैली को हॉस्पिटल के बिस्तर पर इस हालत में देखता हूं तो उसके लिए दिल जलता है, और दूसरी तरफ जो भी चीजें हुई हैं, लगता है मेरे दिल में लैली के निस्बत नफरत पैदा हो गई है। मैं उसके बारे में कोई ना कोई फैसला करना चाहता हूं।
बाप रे बाप, खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। देखो मसूद, मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने लैली पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। वही गलती जो मैंने सहर के साथ की थी। तुम खुद गवाह हो कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया।
तुम्हारी और सहर की दास्तान मेरे और लैली के वाकये से बहुत अलग है।
हाँ बराबर, आप रोशन फिक्र लोगों की हर बात दूसरों से अलग होती है, लेकिन सिर्फ मामला खराब होने तक ही। क्या अगर फारूक मिल भी जाए तो उसके साथ क्या करोगे?
चाहता हूं पहले यकीन हासिल कर लूं, उसके बाद उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि
तुम बहुत भोले हो। तुम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते हो। तुमने और लैली ने कानूनी तौर पर निकाह नहीं किया है, किया है?
तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? रजिस्टर नहीं करवाया था लेकिन हमने निकाह तो पढ़ा है। हमने आपस में कितनी बातें की है, वादे किए हैं। मेरी बीवी है।
मसूद जान, ऐसा लगता है तुम इस जमाने में नहीं जी रहे हो। ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं। इंसान शुरू शुरू में एक दूसरे से ऐसे हजारों वादे तो करते हैं और बाद में उसे बड़े आसानी से भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सबूत है? कोई कागजात है? हाँ, ठंडा हो गया, अपना खाना खाओ।
सलाम वालेकुम करमी साहब।
वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप?
ठीक हूँ, शुक्रिया। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बोलिए।
माफ कीजिए, करामती साहब की कोई खबर है?
करामती साहब कौन है?
वही आपके ऊपर के दफ्तर वाले।
काफी दिनों से उन्हें देखा नहीं।
उनका कोई पता या फोन नंबर?
उनकी किसी से बातचीत नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
हाँ हेलो आरिश।
ढूंढ लिया उसे?
अरे नहीं बाबा, उसका दफ्तर बंद था, कुछ दिनों से दफ्तर नहीं आया है। उसका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है?
नहीं।
ठीक है, मैं दफ्तर हिदायत जा रहा हूँ। वहाँ कोई पहचान है?
तुम अभी गुस्से में हो मसूद, फिर कभी जाना।
ठीक है, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं।
मसूद भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अगर कुछ नहीं मिल पाए तो कोई और कदम उठाएंगे, ठीक है? अभी ऑफिस बंद होने का वक्त हो चुका है, सब कुछ बंद होगा।
ठीक है ठीक है, रहनुमाई करने का शुक्रिया। कुरान और तौरात दोनों इस मौजू के बारे में कहते हैं कि इब्राहिम काफ़ी बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद साहिब औलाद हुए। उन पर खुदा की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दें, और ये एक बहुत बड़ा और सख्त इम्तिहान था जिससे दोनों बाप बेटे को कामयाबी के साथ गुजरना था।
लेकिन क्योंकि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद खुदा की तौहीद के आगे तस्लीम था, इस सख्त इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुजर गए और खुदावंदे ताला की बारगाह में तस्लीम का सबसे आला मकाम हासिल कर लिया। कुरान और तौरात इस मौजू पर भी मुत्तफिक है कि खुदा का ये हुक्म सिर्फ उनके इम्तिहान के लिए ही था, और हकीकत में बेटे की कुर्बानी वाकई हुई ही नहीं थी। लेकिन कुरान और तौरात में इस बात पर इख्तिलाफ है कि ये कुर्बानी का हुक्म किस बेटे के लिए नाजिल हुआ था, क्योंकि कुरान में पेश हुआ है कि ये हुक्म इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए था, तौरात में पेश हुआ है कि ये हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए था। इब्राहिम ने कई मर्तबा इम्तिहान दिए थे, इस बार भी उन्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना था जिसमें खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना था। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपने हाथों से अपने जवान बेटे इस्माइल का गला काटें।
टेप नंबर 3, कज़विन। तुम ये सब क्या कर रही थी लैली?
ये शहीद बाबाई के वालिद का शहर है, उनका स्कूल, उनका मोहल्ला, गली, और ये है शहीद अब्बास बाबाई के वालिद का घर। मैं शहीद अब्बास बाबाई की माँ से मिलने आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि इस घर में शहीद बाबाई का म्यूज़ियम भी है। हम घर के अंदर हैं और जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं वो शहीद बाबाई की माँ है और घर के अंदर हम सलाम वालेकुम। सलाम माँ जी, माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशान किया। मैं लैली गफूरी हूँ और आपके बेटे शहीद बाबाई की ज़िंदगी पर तहकीक कर रही हूँ। मेरी दरख्वास्त है आप हमें उनके बारे में कुछ बताएं, उनकी कोई दास्तान बताएं।
शहर की दरो दीवार उसकी यादों से भरी है। यहाँ घर के अंदर इसकी तस्वीर ले लो, यादगारों से भरा हुआ है। वहां पर एक कमरा है, जाओ वहां की तस्वीर ले लो, अब्बास की चीजों से भरा हुआ है।
खान यूनिस साहब, मुझे बताया गया है कि आप शहीद बाबाई के खानदान के पुराने दोस्तों में से हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं?
मैं उनके लिए ताजिए का सामान लाया करता था, कुछ चीजें खुद बनाता भी था।
आपकी उम्र कितनी है?
तकरीबन 80, लगता नहीं हूँ ना।
नहीं, इंशाल्लाह खुदा आपको लंबी उम्र दे। अगर याद हो तो क्या आप हमें शहीद बाबाई के बचपने या उनकी जवानी की कोई बातें बता सकते हैं?
क्या बताऊं, हर साल ईद कुर्बान के मौके पर मेरे लिए कुर्बानी का गोश्त लाया करता था। मैं भी जरूरतमंदों को दे देता था, क्योंकि मेरे और मेरे बीवी बच्चों को शिकार का गोश्त खाने की आदत थी। अब्बास को पता चला, जब पता चला मेरे सामने खड़े होकर कहा, खान यूनिस, तुम्हें हिरन, जंगली भेड़ वगैरह जैसे जानवर मारने में क्या मजा आता है? उनके भी बच्चे हैं, मां हैं। कहा कि उसने एक मर्तबा चाय की दुकान में टीवी पर देखा था कि एक भेड़ जिसके बछड़े को शेर ने शिकार किया था, उसके लिए रो रहा था। मुझे अब्बास से और अपने आप से शर्म आई और मैंने बंदूक बेच दी। उसके बाद कभी शिकार नहीं किया।
हेलो, बोलिए।
सलाम अलैकुम। माफ कीजिए, मैंने लैली गफूरी के मोबाइल पर फोन लगाया था।
वो अभी नहीं है। आप?
माफी चाहती हूँ, आप?
मैं उनका मंगेतर हूँ।
सलाम करमी साहब, माफी चाहती हूँ, अपना तारुफ नहीं करवाया, मैं हिकमत हूँ।
बदकिस्मती से लैली का एक्सीडेंट हुआ और वो अभी हॉस्पिटल में है।
एक्सीडेंट? कब?
परसों।
अभी उसकी हालत कैसी है?
हालत बहुत ही खराब है। सलाम अलैकुम।
आओ मसूद।
अमीर भाई,
खुश आमदीद।
सलाम मसूद।
स्कोर क्या है?
40-0।
तुम इसे नहीं हरा सकते। मुझे यहां किस लिए बुलाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढा।
बकवास मत करो यार, यहाँ बुलाया ताकि थोड़ा मूड चेंज हो जाए। वैसे तुम्हें खबर देना चाहता हूँ।
क्या है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। दफ्तर हिदायत गया था लेकिन कोई फायदा नहीं।
मैंने कहा था ना नहीं जाना। अमीर भाई थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं, आओ बैठते हैं। मोहम्मद दो लाना।
बोलो।
उसका पता लग गया है, तुर्की गया है।
तुर्की किस लिए गया है?
अभी एक आदमी मिला है जो पहले फारूक के लिए काम करता था। उसने कहा कि 2 साल पहले जब उसका पब्लिकेशन का कारोबार ठप पड़ गया तो वो अपने शहर इस्फहान लौट गया। वहां जाकर 6 महीने हुए थे कि लैली को काम की पेशकश की।
हाँ
तो क्या,
एक इंसान की तरह बाकी की बात बताओ।
आह, यानी तुम्हारी तरह। ठीक है, एक चीज और, वो तेहरान आता है ऐसे किसी की तलाश में जो उसकी मदद करे। एक मिलिट्री का कमांडर, कोई 37 साल का पायलट, नाम बाबाई, जो एयरफोर्स का एक कमांडर था, उसके बारे में तहकीक करके किताब छापे और उसके पैसे ले।
तो इसका फारूक का तुर्की जाने से क्या ताल्लुक है?
अभी बताता हूँ। शुक्रिया मोहम्मद। इसी पायलट बाबाई का एक क्लासमेट इनकलाब के बाद बोरिया बिस्तरा बांध का तुर्की चला गया। फारूक उसका इंटरव्यू लेने गया है।
इसका मतलब यह है कि 2-3 इदारों से पैसा बनाकर उनके लिए किताब लिखने चला है।
मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उस आदमी ने कहा है कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी है और पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है।
अब इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? टेलीफोन, एड्रेस?
उसके पास उसका कोई नंबर नहीं था, लेकिन एक और आदमी है जो फारूक के किताबों की टाइप सेटिंग करता है, उसका नाम पैमान है। वो शायद कुछ जानता होगा। उसके मोबाइल पर मैसेज छोड़ा है, अगर रात तक फोन नहीं आए तो दोबारा फोन करूंगा।
ठीक है,
अगर तुम चाहो तो तुम्हें थोड़ा खेलना सिखाऊं।
कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम अपना खेल खेलो, मैं भी जा रहा हूं अपना खेल खेलने।
पहले अपनी आइसक्रीम खा लो, पिघल रही है।
आओ मसूद भाई,
आप जारी रखें।
जल्दी एट्रोफिन इंजेक्ट करो। जल्दी करो, इसे फौरन लगाओ।
अब्बास कहता था कि इंसान को फवारे की तरह नहीं होना चाहिए, उरूज पर पहुंचते ही नीचे नहीं आना चाहिए। शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था।
परवाज इंसान की हकीकत को उजागर कर देती है। तुम जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, दुनिया तुम्हारी नजर में बड़ी होती जाएगी और तुम दुनिया की नजर में छोटे।
सलाम परवाज, कैसी थी?